ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। लोके विततम् आत्मानम् लोकम् च आत्मनि संततम् मया उभयम् च मया व्याप्तम् मयि च उभयम् कृतम्। लोके विततम् आत्मानम् लोकम् चात्मनि संततम् उभयम् च मया व्याप्तम् मयि चैवोभयम् कृतम्।
शब्दार्थ, लोके इस भौतिक जगत में विततम विस्तीर्ण भौतिक सुख के प्रसंग में आत्मानम जीवात्मा लोकम भौतिक जगत च भी आत्मने जीवात्मा में संततम विस्तृत उभयम दोनों भौतिक जगत तथा जीवात्मा च तथा व्याप्तम व्याप्त मया मेरे द्वारा मई मुझ में च भी एवा निसंदेह उभयम दोनों ही कृतम उत्पन्न। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की बद्ध जीव इस भौतिक जगत में जिसे वह सुख का साधन समझता है यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं किंतु दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण मुझसे युक्त हैं। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूँ और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ये दोनों ही मुझ में स्थित हैं। आवृत्ति करेंगे। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में जिसे वह सुख का साधन समझता है यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं किंतु दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण मुझसे युक्त हैं। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूं और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि दोनों ही मुझ में स्थित हैं। तात्पर्य, मायावादी सभी वस्तुओं को श्री भगवान या पर ब्रह्म के तुल्य मानते हैं। फलतः वे प्रत्येक वस्तु को पूजनीय बताते हैं। उनके सिद्धांत के कारण सामान्य लोग नास्तिकता की ओर प्रवृत्त हुए हैं। इस सिद्धांत के बल पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को ईश्वर समझता है जो सत्य नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि वास्तविकता तो यह है कि समस्त दृश्य जगत ईश्वर की शक्तियों का प्रसार है। ये शक्तियां भौतिक तत्वों तथा जीवात्माओं के रूप में प्रकट होती हैं। जीवात्माएं भ्रमवश या मान बैठती हैं कि भौतिक तत्व उनके भोग के लिए है और वे अपने को उनका भोक्ता मान बैठता है, किंतु इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये दोनों ईश्वर की शक्तियां हैं। इनका मूल कारण श्री भगवान ही है। यद्यपि ईश्वर की शक्तियों का प्रसार ही यह मूल कारण है, किंतु इसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर स्वयं विभिन्न प्रकार से विस्तार करता है। मायावादियों के सिद्धांत की भर्त्सना करते हुए गीता में श्री भगवान का यह कथन है, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेस अवस्थित, सभी जीव मुझ में स्थित हैं, सभी जीव मुझ में स्थित हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है और उनकी शक्तियों का विस्तार है, किंतु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि सारी वस्तुएं उन्हीं के समान पूजनीय है। भौतिक विस्तार तो क्षणिक है और जबकि ईश्वर क्षणिक नहीं है। जीवात्माएं ईश्वर के अंश हैं, किंतु वे स्वयं ईश्वर नहीं है। इस जगत में जीवात्माएं अकल्पनीय नहीं है, किंतु ईश्वर तो हैं। अतः यह सिद्धांत कि ईश्वर की शक्तियां उन्हीं के विस्तार होने के कारण ईश्वर के ही समान हैं, भ्रामक है।
भगवान बोल रहे हैं महाराज चित्रकेतु से। चित्रकेतु महाराज अपनी स्तुति पूरी कर लिए तब श्री भगवान बोल रहे हैं। यही भगवान और भक्त में रिसाइप्रोकेशन होता है, परस्पर वार्ताएं होती हैं। भगवान भक्तों से बोलते हैं और भक्त भगवान से बोलते हैं। श्री भगवान इस जगत के स्वरूप के विषय में और जीवों के विषय में बोल रहे हैं। लोके वितत्मात्मानं, इस भौतिक जगत में जो कि भगवान की शक्ति का विस्तार है, जीव ये समझते हैं कि यह मेरे भोग के लिए बनाया गया है, मैं इसका भोक्ता हूं, इसका स्वामी हूं। और लोकम संतति चात्मनि, लोक भौतिक जगत जीव के लिए ही बनाया गया है। यह आत्मा में अर्थात जीवात्मा में व्याप्त है। ये भौतिक जगत बनाने वाला दूसरा है, परंतु ऐसा मान लिया जाता है, जीवात्माएं मानती हैं कि ये हमारे भोग के लिए बना है, हम इसके स्वामी हैं। ये संसार की दशा है। सब जगह हम लोग बहुत सी चीजें देखते हैं, अपने शरीर से लेकर के और घर द्वार सब कुछ, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये देह मेरा है और देह से भोगे जाने वाली वस्तुएं सब कुछ मेरी है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा, मेरी कार, मेरा सब कुछ इस संसार में कहते ही है। ये संसार मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका भोक्ता हूं। लेकिन वास्तव में कुछ भी जीवात्मा का नहीं है, सब कुछ भगवान का है। भगवान सबके आश्रय हैं। और सबको, दोनों को, माया जगत को और जीवों को उन्होंने ही उत्पन्न किया है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मायावादी भ्रम वैसा सब मानते हैं कि जब भगवान जगत के रूप में हैं तब सभी जगत की वस्तुएं पूज्य हैं। भगवान जब जगत के रूप में बने हैं तो सब कुछ भगवान है, लेकिन यह भ्रम पूर्ण विचार है। भगवान जगत के कणकण में है, व्याप्त है, परंतु कोई भी वस्तु भगवान नहीं है, भगवान के समान पूज्य नहीं है। यह जगत भगवान की शक्ति का विकार है, शक्ति ही परिणत हुई है, भगवान परिणत नहीं है। भगवान जैसे हैं वैसे हैं अपने धाम में, लेकिन यह मान लेना कि जब भगवान ही इस जगत के रूप में बने हैं तब संसार जगत की सभी वस्तुएं भगवान हैं, ये गलत विचार है। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो मुरारी गुप्त, जो बाद में बहुत बड़े भक्त हुए, पहले वे तार्किक थे, वे तर्क करते थे कि सब कुछ भगवान है, तो इस संसार में जो भी वस्तु है सब भगवान है, ब्रह्म है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो बच्चे थे, छोटे थे, वे जा करके उनके भोजन में प्रसाद कर दिए कि सब कुछ ब्रह्म है, तो ये हमारा प्रस्ताव भी ब्रह्म है। जो मुरारी गुप्त बड़े रंज हुए दौड़े बच्चे को मारने के लिए, तो उसने कहा कि आप ही तो कहते थे कि सब ब्रह्म है, एक प्रकार से भगवान ने खंडन किया इस सिद्धांत का। सब कुछ ब्रह्म की शक्ति है लेकिन ब्रह्म नहीं है, शक्ति शक्तिमान में भेद भी है अभेद भी है, इसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बाद में बताया अचिंत भेदाभेद। भेद भी है अभेद भी है पर अचिंत है, हम इसको चिंतन में नहीं समझ सकते। और एक दिन मां सची ने चैतन्य महाप्रभु को खाने के लिए दिया, खई और संदेश, मिठाई खाने के लिए दिया। तो चैतन्य महाप्रभु उसको तो खाए ही, लेकिन इसके साथ मिट्टी खाने लगे। तो माता सची ने आकर के डांटा, तुमने क्यों मिट्टी खाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई ने कहा, तुमने तो मिट्टी खाने के लिए दिया था, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी का विकार है, अनाज, तो यह माटी से यह माटी की भेद विचार, इसमें क्या भेद है, यह भी माटी है, यह भी माटी से पैदा हुआ है, पृथ्वी से बहुत चीजें पैदा होती है, पृथ्वी एक माटी है, तो मिट्टी से मिट्टी उत्पन्न हुआ है, इसमें भेद क्या है? तो सचिन ने बताया माता ने कि बेटा ये खाने से शरीर पुष्ट होता है और ये मिट्टी खाओगे तो शरीर क्षीण होगा, रोगी हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ये विचार है जो, तो अच्छा हुआ हमको तुमने बता दिया, अब मैं संदेश खाऊंगा, कभी मिट्टी नहीं खाऊंगा। तो चाहे प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपट में लिखते हैं कि बचपन से ही सबको इसका ज्ञान होना चाहिए कि भगवान के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है, बहुत सी वस्तुएं हैं और जीवात्माएं हैं, लेकिन जीव में और जगत में भेद है, जीव जीव में भेद है और भगवान में और जगत में भेद है। इस संसार में दो तरह की वस्तुएं, एक जीवात्मा और एक भौतिक जगत वस्तुएं, तो बहुत भेद है। अतः हमें भूल करके भी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं इस जगत की वस्तुओं का भोक्ता हूं। और चूंकि मैंने इसे बनाया है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कोई भी बनाया हो, यह बनाया गया है हमारे लिए, ये कैसे माना जाए? पहले तो बनाने वाले से पूछना चाहिए ना, बनाने वाले से पूछना चाहिए। भगवत गीता में क्या बोलते हैं, भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे यज्ञों का शुभ कर्मों का भोक्ता हूं और लोकों का महाईश्वर हूं महेश्वरम, सभी जीवों का सुहृद हूं। इन तीन बातों को जानने पर शांति मिलेगी, तत्काल शांति मिलेगी। हम सभी शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, परंतु एक बात मानते नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांति नक्षति, ज्ञात्वा इनको इस बात को जानने पर क्या कि श्री कृष्ण सभी कर्मों के शुभ कर्मों के भोक्ता है, उन्हीं के लिए कर्म करना चाहिए और सभी लोगों के सभी जीवों के महाईश्वर है सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां, और मैं सभी जीवों का अकारण हितैषी हूं। इसको ज्ञात्वा जानकर जान लेने पर शांति मृक्षति, जीव सुख प्राप्त करता है, शांति प्राप्त करता है। शांति तो चाहते सभी हैं, सुख चाहते हैं, पर जो उपाय भगवान बता रहे हैं वो करते नहीं। भगवान बता रहे हैं केवल इस बात को जान लेने पर कि इस संसार के मालिक श्री भगवान हैं और सभी कर्मों के भोक्ता हैं और सबके परम सुहृद हैं, तो शांति मिलेगी। शांति मृक्षति, शांति प्राप्त करता है। इसी सिद्धांत को श्री भगवान यहां बता रहे हैं, ये भौतिक जगत को जीव अपना समझता है, मैं इसका निर्माता हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, यह गलत धारणा है। भगवान अपने भक्त से ये सब बातें बता रहे हैं और भगवद गीता में समस्त मानव जाति के लिए उन्होंने एक बताया है, मैं सब में व्याप्त हूं, सब कुछ मेरे द्वारा कृपा किया हुआ है, रचा हुआ है। इस संसार में हम लोग देखते हैं परमिशन लेना पड़ता है, ये किसकी वस्तु है। दुकान में बहुत सी वस्तुएं रहती हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप जा करके उठा नहीं लेगा। कोई कहे कि ये किस लिए दुकान सजाया गया है, तो हमारे लिए है, हमारे लिए है। मान ले कोई और जा करके कोई भी वस्तु उठा ले तो शांति होगी नहीं, वह पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और बहस कर सकता है कि ये हमारे लिए है, दुकान क्यों सजाई गई है और ये खुला रखी गई है, मैं इसमें जाऊंगा और जो भी उठाना होगा उठा लूंगा। ये कितना संकीर्ण विचार है, संसार इतना विशाल है, यहां की प्रत्येक वस्तु भगवान के अधीन है, वही भोक्ता है। हमें इस बात को अवश्य जानना चाहिए, भगवान की शक्ति जगत के रूप में है, भगवान अविकृत वैसे जैसे पहले थे वैसे ही हैं, जगत बनने के बाद भी और ये जगत नष्ट हो जाएगा फिर भी भगवान रहेंगे, सब समय वे मालिक हैं, स्वामी हैं। द्वारका में एक बहुत प्रसिद्ध मणि था, उसका नाम सेमंतक मणि था। सेमंतक मणि भगवान सूर्य से मिला था, सत्राजित नामक एक व्यक्ति को, उस सूर्य का भक्त था, पूजा किया भगवान सूर्य की, तो उसे मणि मिला, बहुत मूल्यवान मणि। तो जहां पूजा होती थी वहां पर मणि के चारों तरफ 85 किलो सोना पैदा हो जाता था। मणि के भार में रंग में कोई अंतर नहीं होता था, वो जितना भारी था उतना ही रहता था, पर उसका ऐसा प्रभाव था कि जहां वो अर्चित होकर के रहता था तो 85 किलो सोना पैदा कर देता था। यह तो प्राकृत मणि का प्रभाव, मणि जैसे है वैसे ही रहता था पर सोना पैदा हो जाता था। ऐसे ही भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, पर ऐसा विचित्र संसार उनसे प्रकट होता है, ऐसे ऐसे वस्तुओं से भरा हुआ ब्रह्मांड उनसे प्रकट होता है, फिर भी वो खाली नहीं होते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और ये जगत नष्ट हो जाएगा उन्हीं में समा जाएगा, फिर भी भगवान वैसे ही रहेंगे, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। भगवान में से पूरा भगवान निकाल दिया जाए फिर भी वे बचे रहेंगे। और फिर प्रलय के समय सारा संसार उनमें समा जाएगा, फिर भी वो कोई मोटे तगड़े नहीं होंगे, वैसे ही रहेंगे। ये भगवान दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुझसे व्याप्त है जगत और मेरे द्वारा ही कृतम किया गया है, मैं इसको पैदा किया हूं और पैदा करके मेरे ही अधिकार में है। मत सर्वम प्रवर्तते, ऐसी बात नहीं है कि भगवान जगत की रचना करके और वैकुंठ में सो गए हैं, अब इधर जो भी मन करे लूटो खाओ पियो, भगवान को पता नहीं है, उनको सब कुछ पता है, सबके हृदय में ही है, सर्वत्र व्याप्त है, उनके अधिकार में सब कुछ है, हमारे अधिकार में कुछ भी नहीं है। इस बात को जानना चाहिए, सब कुछ के रचयिता सृष्टिकर्ता श्री भगवान है और सब कुछ के स्वामी अधिकृत किए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इस लोक में कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसके घर में चोरी हो जाती है, सिक्योरिटी नहीं रहते हैं तो चोरी हो जाती है, वैसे भगवान नहीं है, सब समय सबके साक्षी हैं, उनकी आंखें बंद रहती हैं कभी कभी, तो फिर भी वे सब कुछ देखते हैं, उनकी निद्रा को जोग निद्रा कहते हैं, अचिंत चिक्षक्ति, जो भगवान के इस विशेषता को अपने मन में हमेशा रखना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं मतस्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेसु अवस्थिता, मेरे अधीन सारे सारे जीव हैं परंतु मैं उनके अधीन नहीं हूं, सब कुछ भगवान पर आश्रित है लेकिन भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। इसको कहते हैं मैं सब में मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, इसका यही अर्थ है कि सब मुझ पर आश्रित है लेकिन मैं किसी पर आश्रित नहीं। जैसे मायावादी सोचते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, ये सिद्धांत गलत है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी गलत सिद्धांत के कारण लोग अपने को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान में और जीव में कितना अंतर है इसको समझ लेना चाहिए। इस ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, महाराज चित्रकेतु पहले बहुत अज्ञान में थे और भगवान के मंत्र का जप किए, 7 दिन में विद्याधरों के राजा बन गए। विद्याधर देवताओं की एक जाति है, बहुत श्रेष्ठ देवता, उनके राजा बन गए देवताओं के, और राजा बन करके भगवान का दर्शन प्राप्त किए, उसके बाद स्तुति किए। भगवान ने उनको एक विमान दिया, बहुत श्रेष्ठ विमान, जो एक नगर जैसा था। उस विमान पर चढ़ करके ये बहुत भ्रमण करने लगे। अपने साथ हजारों स्त्रियों को रखते थे, देवलोक की स्त्रियां परम सुंदर, पर उनमें इनकी आसक्ति नहीं थी। वे उन स्त्रियों को रखे थे भगवान का कीर्तन करने के लिए, संगापयन हरि, भगवान हरि का कीर्तन करने के लिए रखे थे। ये सब कीर्तन करते थे और चित्रकेतु महाराज इसको सुनते थे। कभी उनकी आसक्ति नहीं थी, पर फिर भी वे चाहते थे कि मैं संसार से बिल्कुल अनासक्त हो जाऊं। इसके लिए भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है, जो व्यक्ति एक जगह पर रहने लगता है तो उस स्थान पर रहने वाले लोगों से, उस स्थान से आसक्ति हो ही जाती है। अतः वे आसक्ति न हो इसके लिए भ्रमण कर रहे थे। तो घूमते घूमते वे ये विचार किए कि इस जगत में सबसे बड़े वैष्णव का संग करना चाहिए। भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा संभव। तो गए उनका दर्शन करने के लिए। उस समय भगवान शिव कृष्ण कथा कर रहे थे, सभा में बैठे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि सभा में श्रोता थे, पर भगवान शिव का लोकोत्तर चरित्र है, वे कथा कहते समय अपनी प्रिया माता पार्वती को अपनी जांघ पर बैठाए थे, अपनी गोद में, और फिर भी ब्रह्मर्षियों की सभा में कथा कह रहे थे। सनक, सनातन, सनत कुमार, समंदन, ये चारों भाई थे, नारद जी थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे, कथा करते, और कथावाचक अपनी पत्नी को गोद में बैठाया है। तो इसको देख करके चित्रकेतु महाराज विमान पर से ही हंसने लगे, ठठा करके हंसने लगे, और इसके बाद कहने लगे, निकट आकर कहने लगे, देखो देखो ये ब्रह्मवादियों के लीडर हैं, जटा बढ़ाए हैं और ऋषि मुनियों की सभा में बैठे हैं और फिर भी स्त्री को अपने गोद में रखे हैं। हंसने लगे, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, वे भगवान शिव के महिमा को ही बोल रहे थे। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति मित्र भाव रखता है, वे भगवान शिव के प्रति मित्रता का भाव रखे थे। वे एक प्रकार से यह कह रहे थे कि सभा में बैठे हैं, हजारों की सभा में, और फिर भी स्त्री को अपने गोद में रखे, और वो भी कथा कहते समय। अरे साधारण व्यक्ति भी संसार में जब सभा में बैठता है तो पत्नी को दूर ही रखता है, निकट सटा करके नहीं बैठाता है। और ये तो सभा में बैठे हैं और इनकी देखो क्या दशा है, स्त्री को गोद में बैठाए। तो भगवान शिव समझ रहे थे, ये तो भगवान है, ये समझ रहे थे कि चित्रकेतु हमसे परिहास कर रहे हैं। लेकिन स्त्री को बुद्धि नहीं होती है, माता पार्वती वहीं बैठी थी, सुन रहे थे, तो उन्होंने उनको क्रोध आ गया चित्रकेतु की बात से, आंखें लाल लाल हो गई और उन्हें तुरंत कहा। तो शिव जी सदाचार के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो इसको कभी ब्रह्मा जी नहीं कहे, भगवान कपिल देव भी यहां आए हैं वो भी नहीं कहे, सभी देखे हैं कि शिव जी इस तरह से अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं, पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। सनत कुमार नहीं बोले, नारद जी नहीं बोले, और तुम ही सबसे बड़े दंडधर हो गए हो, शिव जी को दंड देने चले हो, अपना पोजीशन नहीं देखते हो और तुम जहां तहां ये बोलते हो, तुम राक्षस हो जाओ, तुम भगवान के चरण में रहने लायक नहीं हो, तुमको अभिमान हो गया है कि तुम बहुत बड़े जितेंद्रिय हो और शिव जी भोगों में हैं, इस अपराध के चलते तुमको राक्षस होना पड़ेगा। चित्रकेतु महाराज बड़े महान महात्मा थे, उनको क्रोध नहीं हुआ, वे चाहते तो साफ दे सकते थे, परंतु क्रोध नहीं आया, उन्होंने प्रणाम किया माता पार्वती को और कहा कि माता जी मेरी बात से आपको तकलीफ हुई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और साप लौटा लीजिए। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रार्थना नहीं किया, वो यही समझे कि जो कुछ होने वाला है भगवान कृष्ण की कृपा से होता है, हर्ष के साथ खुशी से उन्होंने साफ स्वीकार कर लिया। और फिर विमान से वहां से चले गए, वही चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर बने, जिस जन्म में उन्होंने देवराज इंद्र को इंद्र के साथ युद्ध किया और उनको संतुष्ट कर दिया। भगवान के द्वारा ज्ञान दिया गया, इससे चित्रकेतु महाराज पूर्ण शांति में थे, युद्ध में भी उनको कोई विकलता नहीं है, तो वे स्वयं अपने वध के लिए इंद्र को प्रेरित कर रहे थे, वज्र चलाने के लिए कह रहे थे। यह महान विशेषता है, भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, शुद्ध ज्ञान, उसी से इतनी महत्ता उनमें आ गई। असुर होते हुए भी वे देवराज इंद्र को शिक्षा दिए, ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दिए, और इसके बाद भगवान के पास चले गए। इंद्र ने वध किया, पर वध के बाद वे भगवान के पास चले गए। तो इस ज्ञान की बड़ी महत्ता है, हम लोगों को चाहिए कि बारंबार इसको पढ़ें, सुने। भगवान इस जगत के निर्माता हैं और वही इसके भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, सेवा करें, उनके खुशी में अपनी खुशी समझें, उनके आनंद में अपना आनंद माने। बारंबार श्री भगवान इस प्रसंग में ये कहे हैं कई श्लोकों में। कि मैं इस जगत का निर्माता हूं, मैं सबका अधिकारी हूं, सब मेरे अधीन है, और यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसको पा करके मेरी भक्ति करनी चाहिए। यही बातें बार बार कहे। और चित्रकेतु महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहे कि मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया हूं, मेरा पाप नष्ट हो गया है, आपका नाम एक बार भी लेने पर चंडाल भी पापों से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। मैं तो आपका दर्शन किया हूं, दर्शन करने पर क्यों नहीं शुद्धि होगी, मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरा सारा कर्म धुल गया है। तो हम लोगों को प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त होता है भगवान के दर्शन का सौभाग्य और भगवान के कीर्तन का सौभाग्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो अपना जो कर्तव्य है वो अवश्य करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना, भगवद गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना और भगवान का दर्शन करना। जय श्रील प्रभुपाद।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज आप बोले हमको भगवान की खुशी में खुशी होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर तो ऐसा कुछ भाव आता ही नहीं है, ना तो ऐसा कुछ लगता है, इसके लिए क्या?
तो भगवान तो यही कहते हैं, तो आता नहीं है तो कोशिश करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। होगा वही जो भगवान चाहते हैं, हमारे चाहने से कुछ होगा नहीं, इसी में हमारी प्रॉपर स्थिति है कि हम भगवान के इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। भगवान ने कहा है ना, मन मना भव, मेरे मन वाला बनो, अपना मन मत रखो। मुझमें मन लगाओ ये तो अर्थ है ही, लेकिन असली अर्थ है कि मन मना भव, मेरे मन वाला बनो, मेरे मन में जो है वही करो। अर्जुन ने वही किया।
हरे कृष्ण महाराज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत और जो चार वेद है, रुक साम जजुर अथवा चार वेद, इसका दोनों का फर्क क्या है?
श्रीमद् भागवतम में उसमें थोड़ा अंतर है, कि वो वृक्ष है और श्रीमद् भागवतम फल है। निगम कल्प तरल गलितम फलम, और वह गलित फल है, वो नीचे आया हुआ फल है। बस उसके विषय में यही कहते हैं व्यास देव, इस फल को पियो, उसको जूस बनाने की जरूरत नहीं है, फल ही खुद पियो। पिबत भागवतम रस, उसमें गुठली छिलका नहीं है। प्रथम स्कंद से लेकर के बारहवें स्कंद तक केवल रस है, इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे आपको फल प्राप्त हुआ तब पेड़ पर चढ़ने की और काटने की लकड़ी जरूरत नहीं है। साम वेद हो या ऋग वेद हो, अथर्व वेद हो, अब ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। यदि आपको बहुत पका हुआ बढ़िया आम मिल जाए तो ये नहीं विचार करेंगे कि ये इसके पेड़ का पता लगाना चाहिए और पेड़ पर चढ़ना चाहिए या लकड़ी चबाना चाहिए, ये सब नहीं हम सोचते हैं। फल चाहते हैं तो फल तो भागवतम है, समस्त वैदिक साहित्य का ये सार है। फल मिलने के बाद पेड़ पर विचार करने की जरूरत नहीं। और भगवद गीता समस्त उपनिषदों का वेदांत का सार है।
लेकिन महाराज जो कर्मकांड ब्राह्मण ये नहीं मानते ना, हमारे भागवत नहीं मानते, बोले कि वेद बड़ा है और तुम्हारा भागवत छोटा है, ऐसा बोलते।
आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए, दूसरे लोग बोलते रहे बोलने चाहिए। ये भागवत तो समस्त वेदांत का सार है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत इष्यते तद्वसांग तित्तस्य न स्याद् गतिः क्वचित् नान्यत्र स्याद् गतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। सारे वैदिक ज्ञान को भगवान व्यास देव ने संग्रहित किया, संक्षिप्त किया, ब्रह्म सूत्र बनाया है, जिसको वेदांत सूत्र कहते हैं। और वेदांत सूत्र की टीका उन्होंने स्वयं किया श्रीमद् भागवत के रूप में। तो इस ग्रंथ के बाद अब कुछ पढ़ने को बचता नहीं, सब कुछ श्रीमद् भागवत में। दूसरे लोग कहते हैं कि वेद बड़ा है तो वे लोग उनको कहने दीजिए, आप श्रीमद् भागवतम रूपी फल को पीजिए। आप नहीं मानते हैं कि बड़ा है, कि आपको एक शंका है इसमें, इसी को श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, इसी को रूप गोस्वामी ने दिया। सारे ग्रंथों का ये राजा है, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत। यह वेद का सार है, इसेंस है। अगर आपको आम की लकड़ी को चबाना है तो ठीक है, ऋग्वेद पढ़िए। आम खा करके और बाद में इच्छा हुई कि जिस पेड़ से पेड़ का सार है फल, तो मैं लकड़ी और पत्ता ये सब चबाऊंगा, तो चबाइए। उससे वो रस नहीं मिलेगा जो भागवतम से मिलता है। रस सब जगह रहता है, सारे पेड़ में है, लेकिन फिर भी जब पेड़ में फल लगता है तो फल का स्वाद दूसरा ही होता है। बारंबार इस भागवतम को पढ़िए, तब ये प्रश्न नहीं हो पाएगा कि वेद बड़ा है। वेद का ही सार भागवतम है फल के रूप में।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज हरे कृष्ण।
भगवान कहते हैं कि मेरी मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है, पर जो कोई गलत काम करता है या मर्डर कर देता है, बहुत सारे गलत काम होते हैं।
तो भगवान कहाँ कहते हैं मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, कहाँ कहें?
आदमी ये सब गलत काम कर बैठते हैं, तो एक मतलब किसी की गलती रहती है इसमें?
गलती जीव की होती है, वो पाप करता है। भगवान से खुद पूछा गया, अर्जुन ने पूछा है कि अथ केना प्रयुक्त एवं पापम चलति पुरुष अनिक्षण अपनी बार सुने या बला दिवस नियोजित। जीव नहीं चाहते हुए भी पाप करता है, पाप को पाप समझता है, करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी कर देता है, कौन पाप कराता है? ये भगवान से ही पूछा गया। जो भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र हुआ महासमो महापापना विधेन में बह गया, काम पाप कराता है, काम ही क्रोध बन जाता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र हुआ, ये रजोगुण का बेटा है काम। जीव के हृदय में जो अनादि काल से वासना है, कामना है, वही पाप कराती है। भगवान खुद कह रहे हैं वे नहीं कराते हैं। कौन कहता है कि भगवान के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है? ये दूसरे लोग कहते हैं, भगवान नहीं कहते हैं। नहीं तो अर्जुन पूछती होते कि आप सभी के हृदय में हैं और सबकी इच्छाओं को आप चालू करते हैं, तो फिर हमारे अंदर क्यों इच्छा कर रहे हैं कि मैं युद्ध ना करूं? युद्ध क्यों करा रहे हैं आप? जब भगवान प्रेरणा करते हैं कि युद्ध नहीं करने की और फिर ऊपर से समझाते हैं। गीता में ऐसा कहीं नहीं है, भगवान स्पष्ट बोलते हैं जीव पाप करता है कामना के कारण, काम ऐसा क्रोध ऐसा, और जब काम पूरा नहीं होता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो वही इच्छा ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है, जब पूरी होती है तो लोभ का रूप धारण।
रावण क्यों ऐसे सीता देवी को चोरी किया?
महाराज आप बोले कि भगवान सबका हृदय में है, रावण के हृदय में है भी, रावण फिर क्यों सीता देवी को चोरी किया?
भगवान सबके हृदय में है तो ज्ञान भी हरते हैं, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, अपोहनम का अर्थ है विस्मरण, जो चीज याद है उसको हर लेते हैं, स्मृति भी देते हैं और विस्मृति भी देते हैं। रावण बहुत बड़ा पापी था, वो पढ़ा लिखा था, वेदों का विद्वान था, सब कुछ जानता था, लेकिन उसकी चित्तवृत्ति भगवान को समर्पण नहीं की थी। उसके हृदय में भी भगवान थे लेकिन भगवान उसमें ये सब विचार नहीं भर रहे थे, किसी पर स्त्री का हरण करना चाहिए, ये सब विचार उसका था, उसी विचार को भगवान सैंक्शन कर देते थे। अनुमंता है भगवान, सैंक्शन करते हैं, वे स्वयं विचार नहीं देते हैं। विचार पूरा हो या ना पूरा हो, इसमें भगवान सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन वो मूल विचार वो रावण का है, पर स्त्री का स्पर्श करना, चुरा लेना, ये सब विचार भगवान का नहीं है। सैंक्शन करना अलग बात है, और मूल रूप से विचार का उत्पन्न होना हमारी कामना पर निर्भर है। यदि आप मंगला आरती के समय सोए रहे तो कह दीजिए कि भगवान सबके हृदय में है, मुझको सुला दिए। सुला दिए तो वही भगवान फिर प्रसाद के समय आपको गेट आउट कर देंगे। ये विचार सब उचित नहीं है कि भगवान सब करते हैं। भगवान कभी गलत या सही विचार मूल रूप से देते नहीं है जीव को अपनी ओर से। उसके जैसे विचार होते हैं उसकी पूर्ति वो नहीं कर सकता, या जो भी काम है कामना है वो अपने प्रयास से पूरा नहीं कर सकता है। तो भगवान सुविधा देते हैं, जैसे सरकार ने बिजली दिया है तो हमारी शक्ति नहीं है कि हम बिजली का तार स्वयं उत्पन्न करें, खंभा जलाएं, खंभा गाड़ें और बिजली ले लें। लेकिन सरकार दी है और जगह जगह लिखा भी है डेंजर, सावधान, इतना वोल्ट है मत छुइए। लेकिन यदि कोई गलती से छू दे उसके घर का लड़का या कोई मर जाए तो सरकार को कहे कि इसने बिजली दिया है, सब इसमें कारण है। सरकार बिजली नहीं दी होती तो मेरा बच्चा क्यों मरता है। तो सरकार ने बिजली इसके लिए नहीं दिया है कि आप छूकर मर जाइए, उसमें एक कारण है। सरकार ने बिजली दिया है तो उस बिजली को छूकर कितने लोग मर जाते हैं, परंतु इसमें सरकार कोई भागीदार नहीं है मरने में। इसी तरह से भगवान जगत की सृष्टि किए हैं, इसमें जो विचार होते हैं वे अपने विचार होते हैं, अपनी कामना है। रावण बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, पढ़ाई लिखाई होने से क्या, बहुत दुष्ट था। इसीलिए तो रावण का पुतला आज तक जलाया जाता है, आज तक लोग उसके उस दुराचारी के पुतले को फूंकते हैं। बहुत बड़ा दुष्ट था वो, बेचारा मर गया लेकिन आज तक जिला जिला करके उसको चलाते, थूकना ही चाहिए ऐसे पापी व्यक्ति पर। आश्चर्य है कि आप लोग ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं। रावण जैसे व्यक्ति की चर्चा करते हैं, वो भी भगवान पर दोष लगा करके। भगवान सीता का हरण करा दिए, आपका क्या विचार है। उधर हरण करा करके इधर मारते भी हैं, सेना जुटाते हैं। पहले तो अपने विचार को आप ठीक कीजिए, भगवान के प्रति कभी दोष बुद्धि ना हो। भगवान ने बाली का वध कर दिया, वो बाली का वध बहुत जरूरी था। वो सुग्रीव को जान से मारना चाहता था, बहुत बलवान था, और ये जान गया कि राम उसके पक्ष में है फिर भी मारना चाहता था, तब भगवान ने उसका वध कर दिया। तो वो भी इस तरह की बात पूछता है, आप क्यों मारे हमको, हमने क्या गलती की आप। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं, तुम सुग्रीव की पत्नी के प्रति आकृष्ट था, बलात् हरण कर लिया था, इसलिए तुम्हारा वध है, कोई पाप नहीं। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि मिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न। भगवान ने स्पष्ट उत्तर दिया, छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी और अपनी बहन, सुत नारी और अपने बेटा की पत्नी, और कन्या अपनी कन्या, ये सब चारों में से किसी के प्रति कोई कुदृष्टि रखता है, गलत भाव रखता है, तो उसका वध कर देने में कोई पाप नहीं। तो जो भी इस संसार में गलत विचार होते हैं, ये जीव की अपनी कामना होती है, वही पाप कराती है। कभी भगवान पर दोषारोप मत कीजिए, कभी भी नहीं। कोई वाक्य पढ़ते हैं, पहले उसका अर्थ समझिए। एक फैशन जैसा हो गया है भगवान पर दोषारोप करना, रावण की प्रशंसा करना, कंस की प्रशंसा करना। भगवान गीता में कहते हैं, मैं धर्म की स्थापना के लिए दुष्कृतियों का वध करने के लिए बार बार प्रकट होता हूं। तो यही ये क्या ठीक है कहना कि दुष्कृत तो वही कराते हैं और फिर मारने के लिए अवतार लेते हैं, वो दुष्कर्म नहीं कराते हैं। जब जब होई धर्म का हानि, बार ही अधर्म बार, बाढ़ अशु अधम अभिमानी, ये बढ़ जाते ही हैं। जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं तो उसमें कुछ फालतू घास उग ही जाते हैं, उसकी सोहनी करते हैं। ऐसे ही स्त्री भगवान समय समय पर आकर के दुष्टों का वध करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।